आस्था पूरी तरह सतर्क थी। वो बहाने से घर के एक एक कोने को देखने लगी थी और साथ ही अपने मिशन की हर कड़ी को चुपचाप आगे बढ़ा रही थी और हर कोने की घर की खूबसूरती की तारीफ करते जा रहे थे, ताकि सम्राट को बिल्कुल भी ऐसा न लगे कि यहाँ पर किसी तरह की कोई चाल चली जा रही है। जैसे ही आस्था ने एक बंद पड़े कमरे को देखा और उस पर लगे हुए बड़े से ताले को गौर से देखा, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई है, वो मकसद इसी दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। आस्था ने जल्दी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर उस दरवाजे को ध्यान से घूरना शुरू कर दिया। तभी मारिया ने अपनी आंखों में लगे लेंस के थ्रू उस दरवाजे को स्कैन किया। कुछ सेकंड बाद वो पूरी तरह हैरानी से भरकर बोली, आस्था, यही है। जैसे ही ये कन्फर्म हुआ, आस्था के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया। वहीं सम्राट, जो बड़े ही प्यार से आस्था को लगातार निहार रहा था, उसे घबराया हुआ देखकर बोला, क्या बात है आस्था जी, आपको कुछ परेशानी है क्या? अगर आप चाहें तो वहां चलकर बैठ सकते हैं। ये कहकर वो आस्था को एक एक करके अपना कमरा दिखाने लगा, लेकिन आस्था उसके कमरे में नहीं जा सकती थी। उससे पहले ही उसने अपने हाव भाव से अपनी सभी सहेलियों को इशारा कर दिया जो उससे कनेक्ट थीं। तभी सभी लड़कियां एक साथ ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, अरे आस्था, कहाँ चली गई हो तुम? आस्था सब समझ चुकी थी कि सम्राट उसे अपने कमरे में ले जाकर कुछ और ही इरादे रखता है। कौन जाने कमरे में जाकर वो अपनी हद भी पार कर दे, इसीलिए सभी लड़कियां एक साथ शोर मचाने लगी। आस्था जल्दी से बोली, सॉरी सर, आपका कमरा हम फिर कभी देख लेंगे। देखा ना आपने, मेरी फ्रेंड्स कितना ज्यादा चिल्ला रही हैं, अगर मैं अभी नहीं गई तो ये पूरा विला सिर पर उठा लेंगी। एक पल के लिए ये बात सुनकर सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। उसका दिल तो कर रहा था कि आस्था को बालों से पकड़कर कमरे में घसीट ले जाए, लेकिन उसने अपने चेहरे की मुस्कान जरा भी कम नहीं होने दी और चुपचाप उसके पीछे पीछे हॉल में आ गया। हॉल में आकर आस्था ने गहरी सांस ली। वो जल्दी से अपनी सहेलियों के पास पहुंची और गुस्से का नाटक करते हुए बोली, क्या है, इतना तेज क्यों चिल्ला रही थी तुम लोग? मिस्टर ठाकुर मुझे पूरा घर दिखा रहे थे। तुम जानती हो उनका घर कितना ज्यादा खूबसूरत है? तुम्हारी वजह से मैं पूरा घर नहीं देख पाई और मुझे यहाँ आना पड़ा। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो तुम लोग इतना तेज चिल्ला रही थी? वो बनावटी गुस्से और नाराजगी के साथ सबको घूरते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह गई। वहीं सम्राट अंदर ही अंदर उसके सारे दोस्तों रौनक, राधिका और एंजल को खौफनाक मौत देने का ख्याल मन ही मन सोच चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसके और आस्था के बीच में आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आस्था को सुरक्षित देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। तभी रौनक मुंह बनाते हुए बोली, यार, मुझे क्या पता था कि तुम सर के साथ घर देख रही हो। हमें लगा पता नहीं कहाँ चली गई हो। और ये देखो ना, कितना डिलीशियस पिज्जा रखा है सामने। हम तो सारा पिज्जा खाने वाले थे, फिर हमें तुम्हारी याद आ गई, इसीलिए एक साथ आवाज लगा दी। अब तुम्हें पिज्जा खाना है तो बताओ, वरना तुम तो जानती हो। रागिका तुरंत रौनक को घूरते हुए बोली, अरे, हम तो तुम्हें इसीलिए बुला रहे थे। तुम जानती हो ना, ये रौनक अकेले ही सारा पिज्जा खा जाएगी। पिज्जा इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। हमने सोचा तुम भी आ जाओ, कुछ खा लो। जैसे ही राधिका ने ये बात कही, आस्था ने नाराजगी छोड़कर पिज्जा की तरफ देखा। सम्राट का चेहरा देखकर उसका मन तो कर रहा था कि उसी वक्त उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, ओ सच में पिज्जा? सम्राट तुरंत बोला, सब कुछ हमने आपके लिए ही तो अरेंज किया है, प्लीज एक स्लाइस लीजिए। आस्था ने एक स्लाइस उठाई और जैसे ही मुंह में डालने लगी, उसकी नजर वहां खड़े सभी सिक्योरिटी गार्ड्स पर चली गई। वो थोड़ा असहज दिखने का नाटक करने लगी। सम्राट ने उसकी आंखों का इशारा समझ लिया और धीमे स्वर में बोला, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं, इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों महसूस कर रही हैं? आस्था ने तुरंत संभलते हुए कहा, वो सर, आपके इतने सारे गार्ड सामने खड़े हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। सर, आपको अगर ठीक लगे, आप चाहें, आप उन्हें भी खाने के लिए यहीं बुला लीजिए प्लीज, ऐसे अकेले खाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही आस्था ने ये कहा, सम्राट ने तुरंत घूरकर अपने गार्ड्स को देखा और आंखों ही आंखों में उन्हें वहां से बाहर जाने का इशारा कर दिया। उसके इशारे को समझते ही सभी गार्ड एक एक करके वहां से बाहर निकल गए। सभी गार्ड के जाने के बाद सम्राट ने तुरंत उन्हें टेक्स्ट मैसेज छोड़ दिया, कोई भी गार्ड किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखेगा। अगर किसी भी गार्ड को किसी लड़की को देखते हुए पाया गया, उसी वक्त उसे शिकारी कुत्तों के सामने जिंदा डाल दिया जाएगा। सभी गार्ड सम्राट की धमकी वाला मैसेज पढ़कर पूरी तरह घबरा गए थे। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस कर लिया था कि भूलकर भी वो लड़कियों की ओर बिल्कुल नजरें उठाकर नहीं देखेंगे, क्योंकि सम्राट की आंखें चील के जैसी थीं, वो उन पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था। सम्राट के खौफनाक चेहरे को वो लोग अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन ठीक उसी वक्त आस्था ने गहरी नजरों से रौनक को देखा। रौनक ने तुरंत इशारा समझ लिया और अचानक फटाफट से पिज्जा की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, देखो आस्था, तुम ऐसा नहीं कर सकती, सारा पिज्जा खुद नहीं खा सकती, मुझे भी दो। ये कहकर वो जानबूझकर आस्था के हाथ से पिज्जा लेने लगी और दोनों ने ऐसा दिखावटी झगड़ा किया कि एक पूरी पिज्जा स्लाइस आस्था की साड़ी पर गिर गई। ये देखकर सम्राट को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया उसी वक्त रौनक का गला दबा दे, लेकिन अगले ही पल रौनक ने मासूम बनते हुए कहा, आई एम सॉरी आस्था, मुझे नहीं पता था कि पिज्जा तुम्हारी साड़ी पर गिर जाएगा। आस्था ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, पता नहीं तुम्हारी यही हरकतें रहती हैं। सर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम लोग कहाँ से आए हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जैसे ही आस्था ने नाराजगी के साथ ये कहा, सम्राट ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल लिए और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं इसमें कोई बात नहीं है, आप लोगों को देखकर तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, बचपन में ऐसी शरारतें कितनी अच्छी लगती थी। ये कहकर उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, हालांकि अंदर अंदर उसका रौनक का पूरी तरह से गला दबाने का दिल कर रहा था। आखिरकार रौनक की हिम्मत कैसे हुई उसके सपनों की लड़की की साड़ी पर किसी तरह का कोई भी कचरा गिराने की। अपने ही इमेजिनेशन में वो रौनक को बड़ी ही खतरनाक मौत दे चुका था, लेकिन उसने अपनी उस कल्पना की एक भी झलक चेहरे पर नहीं आने दी, उसने पूरी तरह अपने जज्बातों को छिपा लिया था। हालांकि राधिका और एंजल बड़ी ही सावधानी से सम्राट की ओर देख रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वे उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही हों कि आखिर इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है। एक पल के लिए सभी की सांसें अटक गई थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि न जाने कब सम्राट का गुस्सा भड़क जाए और वो सबको बंदी बनाने का हुक्म दे दे। सम्राट के बारे में जितनी भी जानकारी जुटाई जा सकती थी वो लोग पूरी तैयारी के साथ ही वहां आए थे। फिलहाल जब राधिका ने सम्राट के एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत समझ लिया तो उसने रौनक की ओर देखते हुए कहा, क्या यार रौनक, जहाँ देखो बच्चों जैसा बिहेव करने लग जाती हो। एंजल ने भी रौनक को देखकर कहा, हाँ यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो ना आस्था की ये फेवरेट साड़ी थी और देखो कितनी गंदी हो गई है। जैसे ही सभी ने मिलकर रौनक को थोड़ा बहुत डांटा, रौनक ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा, यार इसमें मेरी क्या गलती, सम्राट सर ने इतना टेस्टी पिज्जा बनवाया था कि मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था और इसी चक्कर में ये सब हो गया। प्लीज आस्था मुझे माफ कर देना और सम्राट सर आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप भी सोच रहे होंगे कि कितनी ज्यादा जल्दबाज लड़की हूँ मैं।
तभी सम्राट, जो कुछ ही पल पहले अपने मन में रौनक को खतरनाक सजा देने की सोच रहा था, उसके माफी मांगने पर उसकी ओर देखने लगा और बोला, अरे अरे रौनक जी कैसी बातें कर रही हैं आप, ये आपका अपना घर है, आप जैसे चाहें वैसे खा सकती हैं वैसे पी सकती हैं, प्लीज दिल छोटा मत कीजिए। सम्राट के इस तरह से बोलने पर कहीं ना कहीं सभी ने राहत की सांस ली। माहौल जो कुछ पल पहले तक तनाव से भरा हुआ था अब थोड़ा हल्का पड़ने लगा। आस्था ने रौनक की ओर देखते हुए नरमी से कहा, अरे यार रौनक मुझे साड़ी का इतना भी बुरा नहीं लग रहा, अगर तुम दुखी रहोगी और रोती रहोगी तो मुझे जरूर बुरा लगेगा, प्लीज अपने आंसू पोंछ लो और बिल्कुल ठीक हो जाओ। ये कहते हुए आस्था ने रौनक को पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश की। दरअसल आस्था अच्छी तरह जानती थी कि रौनक दिल की साफ है, लेकिन उसका मुंह जरा फिसल जाता है। अगर उससे गलती से भी कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए तो यहाँ उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए वो हर हाल में माहौल को सामान्य बनाए रखना चाहती थी ताकि कोई अनचाही बात बाहर ना आ जाए। सारी लड़कियां एक साथ पड़ी थीं, नेचुरल एक्टिंग कर रही थीं। तभी आस्था जल्दी से खड़ी हो गई और सम्राट को देखकर बोली, सर अगर बता सकें तो वॉशरूम किधर है। सम्राट ने तुरंत वॉशरूम की ओर इशारा किया। आस्था ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर आपका घर तो महल जैसा बड़ा है, मैं तो कन्फ्यूज हो जाऊंगी, प्लीज किसी नौकर को बुला दीजिए, वो मुझे वॉशरूम तक ले जाएगा। जैसे ही आस्था ने ये कहा सम्राट तुरंत बोला, अरे किसी और की क्या जरूरत है, आप मेरी मेहमान हैं तो मैं खुद आपको लेकर चलता हूँ। ये कहकर वो आस्था को साथ लेकर जाने लगा, लेकिन तब तक उनका असली काम हो चुका था। आस्था के जाते ही रौनक ने अपना प्लान शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद आस्था साड़ी साफ करके वॉशरूम से बाहर आ गई। वहीं सम्राट की आंखों में एक बार फिर आस्था की छवि बस गई। वो मन ही मन उसे अपने साथ बाथरूम में कल्पना करने लगा और उसके भीतर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसे ये एहसास अच्छा लग रहा था। फिलहाल उसने अपने जज्बातों पर काबू रखा और मन ही मन सोचा, बस आज ये लड़की यहाँ से चली जाए, फिर इसे अकेले बुलाना काफी आसान होगा और फिर मैं इसके साथ जो चाहूंगा वो करूंगा। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। आस्था जल्दी से साड़ी ठीक करके बाहर आई और बोली, आई एम सो सॉरी सर, आपको ये सब देखना पड़ा, मेरे दोस्त अचानक ऐसा कर देंगे, मैंने सोचा नहीं था, आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। सम्राट तुरंत बोला, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग प्लीज एंजॉय कीजिए। वो सबके साथ वापस बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग मेरी मेहमान हैं, जो दिल करे वो कीजिए। तभी आस्था और बाकी सब खाने के लिए बैठ गए, लेकिन आस्था ने पहला स्लाइस लेने से पहले सम्राट की ओर देखा और बोली, सर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम आपके मेहमान हैं और आप खुद कुछ खा नहीं रहे, प्लीज आप भी कुछ तो लीजिए। सम्राट हल्की हंसी के साथ बोला, लेकिन आप लड़कियों के बीच में मैं अकेला लड़का बैठा हुआ क्या अच्छा लगूंगा। तभी आस्था तुरंत खड़ी हुई, उसने सम्राट का हाथ पकड़ लिया और बोली, सर प्लीज आप इतने अच्छे हैं, ऐसी फॉर्मेलिटी मत कीजिए, आइए बैठिए ना।
ये कहकर उसने उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बैठा दिया। सम्राट अपनी ललचाई नजरों से आस्था को देख रहा था। उसके पास बैठने की वजह से आस्था की कमर का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था और वो बेसुध होकर उसे देखता जा रहा था। आस्था जानती थी कि उसकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं, लेकिन उसने पूरी तरह से नेचुरल एक्टिंग बरकरार रखी। उसने जल्दी से कुछ चाइनीज खाना प्लेट में डालकर सम्राट को सर्व किया। सम्राट ना चाहते हुए भी आस्था को देखते देखते एक एक बाइट खाने लगा। वहीं बाकी सभी लड़कियां मुस्कुराते हुए आपस में बातें कर रही थीं, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह आस्था और सम्राट पर ही था। जैसे जैसे सम्राट खाता जा रहा था, उसका कंट्रोल ढीला पड़ता जा रहा था। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि उसे अभी इसी वक्त आस्था की कमर को छू लेना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपना हाथ आस्था की कमर की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया।